रेडियो मानव रचना 107.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और आप है मेरे साथ यानी दीक्षा के साथ और वक्त है कुछ खास बातें करने का लॉ के बारे में। जी हाँ, लॉ का टॉपिक वैसे एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन अगर जरूरत या फिर टॉपिक आप ही से जुड़ा हो तो भाई आपको ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। तो क्या है आज का टॉपिक ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आइए मुलाकात कराते हैं हमारे आज के मेहमान के साथ। और हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट संजय ठाकुर जो कि कॉर्पोरेट लॉयर हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में।
थैंक यू दीक्षा।
संजय जी, आप सुप्रीम कोर्ट में पिछले 8 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप एक कॉर्पोरेट लॉयर हैं, तो पहले मैं चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट तक का सफर आपने कैसे तय किया ये आप हमारे लिसनर्स को बताएं।
इसके अंदर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से हर एक लॉयर की एक अंदर की इच्छा जरूर होती है कि वो अपने आप को उसके केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो।
जी जी,
ऑफकोर्स उससे अलग नहीं था मैं। एक्चुअली मेरी सारी पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ में हुई, वहां पर हाई कोर्ट के अंदर मैंने प्रैक्टिस शुरू की और उस समय जिस समय मैंने ये चीज देखी कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो उस समय 1998 के अंदर मैं चंडीगढ़ छोड़ के फरीदाबाद शिफ्ट कर गया।
जी,
एंड आई गॉट एनरोल्ड विद द फरीदाबाद बार एसोसिएशन आल्सो। उसके बाद कॉर्पोरेट के अंदर क्योंकि मेरी प्रोफिशिएंसी थी तो कॉर्पोरेट का काम मैंने शुरू किया, फर्स्ट विद द दिल्ली हाई कोर्ट। उसके बाद मुझे केसेस आते रहे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से।
जी,
और पिछले 8 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ हूं और आज की डेट के अंदर सबके प्यार की वजह से इवन मैं सुप्रीम कोर्ट बार की इलेक्शंस तक के अंदर हूं।
जी जी,
तो एक अच्छा सफर रहा।
जी, यानी सफर बहुत अच्छा रहा और आपकी जो तमन्ना थी, आपकी जो इच्छा थी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना, वो बिल्कुल पूरी हुई।
जी बिल्कुल।
साथ ही साथ लिस्टर्स, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि संजय जी का लॉ से बहुत ही खासा ताल्लुक है और भारत का संविधान भी 26 नवंबर को बना था 1949 में और संजय जी का जन्मदिन भी 26 नवंबर को ही आता है, तो ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस कहेंगे संजय जी के साथ हुआ है और शायद इनकी जन्मतिथि से ही इनका रिश्ता है लॉ के साथ।
जी,
तो संजय जी आपसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर के बारे में, यानी एक आम आदमी जो बहुत सारी चीजें खरीदता है, बहुत सारा सामान खरीदता है अपने पर्सनल यूज के लिए और बहुत बार उन चीजों में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी निकल आती है और वहां पर कोई सोचता है, एक इंसान यही सोचता है कि शायद हम किसी चीज का सहारा ले पाते, किसी ऐसे एक्ट का या लॉ का सहारा ले पाते जहां पर हम अपने हक के लिए लड़ सकते। संजय जी, बात करते हैं कंज्यूमर्स की, यानी एक आम आदमी ही मोस्टली कंज्यूमर देखा जाता है। हम या आप बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं और कई बार उन सर्विसेज से या उन चीजों से, उन प्रोडक्ट से हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं और वहां पर हमें लगता है कि शायद हम एक कोर्ट केस ही फाइल कर देते या फिर हम अपने हक को लड़ने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा लॉ, ऐसा कौन सा एक्ट बना है जो कंज्यूमर्स के लिए है।
ऐसा है, सन 1986 के अंदर भारत के संविधान ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है उसको फॉर्म किया।
जी,
इसके पीछे मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि जस्टिस होता है लेकिन थोड़ा वक्त लगता है।
जी बिल्कुल।
तो उस समय की सरकार की ये सोच थी कि क्यों ना कंज्यूमर्स के लिए एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जिससे एक तो कोर्ट्स के ऊपर जो भार है वो कम हो और दूसरी चीज ये है कि इन लोगों का समाधान जो है वो जल्दी से जल्दी इनकी शिकायतों का निपटारा हो।
जी जी।
तो जो 1986 के अंदर एक्ट आया उसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और ये सिर्फ उन चीजों के लिए नहीं था कि जो आपने खरीदी
जी
या जो चीज बनी हुई है। अगर आपने किसी के साथ कोई खरीदने का वादा किया है और उसके अंदर आपने पैसे दिए हैं, और इस चीज पे मैं जरूर जोर डालना चाहूंगा कि अगर कोई भी सर्विस आपको फ्री ऑफ चार्ज मिली है उसके जी अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का रोल नहीं आता है।
जी जी।
लेकिन अगर आपने कोई चीज खरीदी है
जी,
चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस भी हो
जी,
तो दोनों चीजें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर होती हैं।
जी।
जो ध्यान था इस लॉ को बनाने वालों के दिमाग में वो ये था कि इसको एक समरी सूट की तरह, समरी सूट होता है जिसके अंदर निपटारा जो है वो जल्दी से जल्दी हो
जी जी,
और जिसके अंदर टेक्निकल प्रोसीजर्स जो है उसके ऊपर ज्यादा जोर ना डाला जाए। तो उसके अंदर लॉ मेकर्स ने इस चीज का ध्यान रखा कि हर निपटारा जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाए।
जी जी।
और हर कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर फोरा की यही कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी निपटारा हो, लेकिन हमारी जनता भी ज्यादा है।
जी जी।
केसेस भी ज्यादा हैं।
जी।
तो थोड़ा टाइम इसके अंदर ज्यादा लग जाता है, लेकिन ये खुद एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि हर कोर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि 6 महीने के अंदर ये निपटारा हो जाए।
हो जाए, यानी समय जो है वो कम से कम 6 महीने का तो लग ही जाता है, अक्सर 6 महीने का या कम भी लग सकता है, लेकिन 6 महीने का आप एक टारगेट लेकर चल सकते हैं।
ऐसा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्ट बनाया गया है
जी,
आम तौर के अंदर तो यही होता है कि जैसे मैं आप एक केस फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन आज की डेट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कोर्ट्स जो हैं वो ले रही हैं, विच इज बेसिकली अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, इट इज नॉट अ कोर्ट, इट इज अ फोरा। तो उसके अंदर आमतौर के ऊपर जो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है वो यही कोशिश करता है कि पहली और दूसरी पेशी के अंदर ही अपने कंज्यूमर से बात करके इस केस को खत्म करवा दे।
जी।
लेकिन जहां पर आपस में सुलह नहीं हो पाती है तो ऑफ कोर्स फिर कंज्यूमर कोर्ट का और कंज्यूमर फोरा का हमारे पास रिकोर्स तो है ही है।
जी बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें चल रही हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़ी हुई, और कौन है कंज्यूमर और किस तरीके से आप केस फाइल कर सकते हैं, ऐसी कुछ खास बातें करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट संजय ठाकुर, जो कि कॉर्पोरेट लॉयर हैं। संजय जी, अब हम बात जानना चाहेंगे आपसे, हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो मैं यही जानना चाहूंगी आपसे, कंज्यूमर उपभोक्ता है कौन? क्या हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट को लेंगे जो कि काफी रॉ मटेरियल परचेज करता है, या फिर एक आम आदमी जो टीवी, फ्रिज, मोबाइल या फिर छोटी छोटी चीजें और बड़ी बड़ी चीजें खरीदता है?
दीक्षा, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसी चीज को हमें समझना चाहिए कि कंज्यूमर है कौन। कंज्यूमर एक आम आदमी है। अगर मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ अपने लिए तो मैं कंज्यूमर हूँ। लेकिन अगर मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ उसको टैक्सी की तरह रन करने के लिए, जिससे मैं पैसे कमाता हूँ, तो मैं कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। सबसे पहली बात तो यही हो गई। तो जिस तरह आपने कहा कि अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने वेंडर से चीजें खरीदता है, जिस तरह रॉ मटेरियल हो गए और चीजें हो गई, तो वो कंज्यूमर की परिभाषा के अंदर नहीं आता, पहली बात। दूसरी चीज, यहाँ पर कंज्यूमर सिर्फ चीज खरीद ही नहीं रहा है, बल्कि अगर वो कोई सर्विस किसी आदमी से ले रहा है या उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट उस आदमी से कर दिया है खरीदने का या सर्विस लेने का, और वो पैसे दे चुका है और उसके बाद वो चीट होता है, तो वो इमीडिएटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिभाषा के अंदर आ जाता है और वो केस फाइल कर सकता है।
जी बिल्कुल। तो यानी कंज्यूमर एक आम आदमी है जो अपनी जरूरत के लिए, अपने यूज के लिए सामान खरीदता है या फिर सर्विसेज लेता है। तो ये तो हमें समझ आ गया संजय जी, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कंज्यूमर के लिए जब वो एक कोर्ट केस फाइल कर सकता है।
देखिए, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक एक साबुन से लेकर अपने खाने की चीजों से लेकर, अपनी गाड़ी से लेकर, एक सिंपल पेन से लेकर, एक छोटा सा ब्लेड जिसकी कीमत हार्डली 3.5 रुपए होती है, ये सारी चीजें जो है वो कंज्यूमर के अंदर आती हैं। पहली बात। दूसरी चीज ये आ जाती है कि जहां किसी आदमी के साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई हो, डिफेक्ट हो चीज में, या चीज के अंदर कमी हो, या मुझे ये दिखाया गया हो एडवर्टीजमेंट में आ रहा है कि ये सारी चीजें मुझे मिलेंगी, वो मुझे ना मिले, या फिर कोई चीज इस्तेमाल लाइक ऐसी बनी हो जिससे मेरी जानो माल को या मेरे चीजों की जानो माल को खतरा हो, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आती हैं। और अगर किसी भी इंसान को ऐसी चीजें मिलें जो कि बताई गई हो कुछ और, और मिले कुछ और, तो इमीडिएटली उसके ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक्शन लिया जा सकता है।
जी यानी आपको दावा किसी और चीज का किया गया है और दी कोई और चीज जा रही है, उसमें कुछ कमियां हैं या फिर आपकी जान को या आपके अपने सामान को कुछ खतरा हो सकता है, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फायदा उठा सकते हैं।
जी बिल्कुल।
तो बहुत सारी बातें और भी जारी रहेंगी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट संजय ठाकुर, जो बता रहे हैं कुछ खास बात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़ी हुई। आप भी एक उपभोक्ता हैं और किसी भी तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कुछ खास जानना चाहते हैं, तो जरूर अपने सवाल हमारे पास SMS के जरिए भेजिए। नंबर बहुत आसान है, 8010781078। संजय जी, आपने काफी कुछ बताया कि कंज्यूमर कौन है और किन किन सिचुएशंस में वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फायदा उठा सकता है, इसका सहारा ले सकता है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज के अगेंस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा लेना चाहे, तो वो कहां कहां पर केस फाइल कर सकता है और कितने अमाउंट तक की चीजें या फिर कितने अमाउंट तक का केस जो है वो फाइल कर सकता है?
दीक्षा, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने अमाउंट तक का केस फाइल कर सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है।
जी।
क्योंकि अगर आपने अपने लिए कोई चीज खरीदी है
जी,
और आपको धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा है
जी,
तो ऑफ कोर्स हमेशा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपकी हेल्प के लिए पीछे खड़ा रहेगा।
जी।
हाँ, इतना जरूर फर्क है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला हिस्सा आता है कंज्यूमर फोरम
जी,
जो कि करीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेलेबल है आज की डेट में हिंदुस्तान में
जी,
और हमारा खुद फरीदाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो कोर्ट के अंदर ही है
जी।
उससे अगली जो आता है स्टेप वो है स्टेट कमीशन का। हरियाणा का स्टेट कमीशन जो है वो पंचकूला के अंदर है
जी।
और इससे अगला जो स्टेप आता है वो आता है नेशनल कमीशन का
जी।
नेशनल कमीशन जनपद के ऊपर, जनपद बिल्डिंग के अंदर, दिल्ली के अंदर है
जी,
जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक है। तो कुल मिला के स्टेट कमीशन हिंदुस्तान में 34 हैं, नेशनल कमीशन एक है। और अगर आप नेशनल कमीशन की भी जजमेंट से खुश नहीं है
जी,
तो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के पास आप कभी भी जा सकते हैं
जी,
जहां पर आप अपनी फरियाद के अंदर SLP अपनी फाइल कर सकते हैं
जी, जी।
अब दूसरी दीक्षा इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैंने आपको बताया था कि एक ब्लेड से लेकर एक कार तक, इवन हवाई जहाज तक अगर आप अपने लिए खरीदते हैं और उसके अंदर आपको एक चीटिंग का सामना करना पड़ता है, तो कंज्यूमर फोरम के अंदर आप जा सकते हैं
जी।
लेकिन इसके अंदर एक चीज देखने लायक होगी कि अगर आपका क्लेम 20 लाख रुपए तक का है
जी,
तब आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर अपना केस फाइल कर सकते हैं
जी।
अगर आपका क्लेम 20 लाख एक रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का है, तो उस समय ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यह होता है कि उस केस को लेगा कौन
जी,
तो वो जाती है स्टेट कमीशन के पास। और अगर 1 करोड़ से ऊपर की चीज है, क्योंकि आजकल तो मकान भी जो हैं वो 1 करोड़ से ऊपर हैं, तो अगर आपके साथ ठेकेदार का या बिल्डर का ही झगड़ा है, तो उसके अंदर आप सीधा नेशनल कमीशन के अंदर अपना केस फाइल कर सकते हैं
जी, जी।
दूसरी चीज, इसके भी आगे अपील के स्टेजेस जो है वो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। जिस तरह अगर आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जो आपका जजमेंट आया, अगर आप उससे ना खुश हैं, तो आप अपनी अपील 30 दिन के अंदर स्टेट कमीशन के अंदर आपको फाइल करनी चाहिए
जी, जी।
और इनकेस अगर आपका उसके अंदर देरी भी रह जाती है, तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर हमारे पास ऑफ कोर्स कुछ प्रोविजंस हैं
जी,
जिसके अंदर आप वजह बता करके ये देरी क्यों हुई
जी, जी।
कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट उसको कंडोन कर सकती है। कंडोन करने का मतलब यह है कि उस गलती को माफ कर सकती है और उसको यही समझा जाएगा कि वो 30 दिन के अंदर अपील फाइल हो गई है
जी।
उसके बाद जो अपील का ऑर्डर आता है स्टेट कमीशन से, उसके अगेंस्ट रिवीजन लाई करती है नेशनल कमीशन के अंदर
जी।
और नेशनल कमीशन का जो ऑर्डर आता है, अगर कंज्यूमर उससे भी ना खुश है
जी,
तो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, तो वहां पर SLP, जिसका मतलब होता है स्पेशल लीव पटीशन
जी,
वो आप फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर
जी। बिल्कुल, यानी नेशनल कमीशन से भी अगर आप संतुष्ट नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटा सकते हैं। बहुत सारी बातें और भी जारी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, दे रहे हैं कुछ खास जानकारी हमारे आज के स्पेशल मेहमान एडवोकेट संजय ठाकुर। संजय जी, काफी कुछ हम आपसे जान चुके हैं कि कंज्यूमर्स किस तरीके से केस फाइल कर सकते हैं, कितने तक का केस फाइल किया जा सकता है, यानी क्या है लिमिट। तो आपने कहा है लिमिट तो कोई नहीं है, जितने का भी आप सामान खरीदेंगे आप उतने तक का केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम एक केस फाइल करते हैं तो हम किन किन इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आइडिया आप हमारे कंज्यूमर्स को दें।
देखिए दीक्षा, इसके अंदर ये चीज बड़ी क्लियर है कि जिस समय हम अपना केस फाइल करते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि किस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हम लोग ये केस फाइल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसके अंदर एक डिस्टिंक्शन देना चाहूंगा। आप अपने पैसे जमा करवाते हैं बैंक के अंदर, या आप इंश्योरेंस लेते हैं, या आप अस्पताल में भर्ती होते हैं, या फिर आप कोई भी मोबाइल फोन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, या फिर आप एक कॉन्ट्रैक्टर से या बिल्डर से
जी
फ्लैट लेते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर से अपना मकान बनवाते हैं, ये सब के सब लोग जो हैं इसके अंदर शामिल होते हैं
जी।
तो आप बैंक हो, इंश्योरेंस हो, हॉस्पिटल हो, इन सब के पास जो है इनके अगेंस्ट आप अपना केस, अगर आपके साथ आपको ये लगता है कि चीटिंग हुई है
जी, जी।
तो आप अपना केस दर्ज करवा सकते
जी। यानी किसी भी तरीके की हम सर्विस ले रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हम उस कंपनी या उस इंस्टीट्यूशन या उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट अगर हम संतुष्ट नहीं है तो केस फाइल कर सकते हैं
जी।
साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी संजय जी, डॉक्यूमेंट्स किन किन की जरूरत पड़ेगी हमारे लिसनर्स को, अगर वो कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फायदा उठाना चाहें, तो किन किन जरूरी कागजातों की जरूरत उन्हें होने वाली है।
दीक्षा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस चीज को मैं ये बताना चाहूंगा, कोई भी आप सामान लेते हैं कृपया उसका बिल जरूर लें
जी,
क्योंकि यही बिल आपका अगर आपने केस डालना है कंज्यूमर फोरम के अंदर या कंज्यूमर फोरा के अंदर, तो यही बिल आपका सबसे पहली जरूरत होगी कि आप अपना केस डाल पाए
जी।
अब जिस समय आप कहीं पर भी अपना केस डालते हैं, आप अपना बिल लगाएंगे, उसके बाद अगर आपको उस चीज को सुधरवाने के लिए
जी
कुछ खर्चे करने पड़े, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि आपने एक गाड़ी खरीदी
जी,
अब आपकी गाड़ी बिगड़ गई और वो आपने अपनी कंपनी के शोरूम के अंदर दे दी सुधरवाने के लिए
जी,
और उसकी वजह से आपको अपने काम के लिए टैक्सी में जाना पड़ रहा है या थ्री व्हीलर में जाना पड़ रहा है,
जी,
अगर बस में भी जाना पड़ रहा है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप उसकी टिकट संभाल के रखें।
जी जी।
उसके बाद आपने अपनी कंप्लेंट जो भी मैन्युफैक्चरर को या सर्विस प्रोवाइडर को या आपकी कोई भी कम्युनिकेशन हुई हो उनके साथ, मतलब कोई भी पत्राचार हुआ हो, कृपया उसकी जो कॉपीज हैं वो हमेशा संभाल के रखें, क्योंकि कल कोर्ट के अंदर दिखाने के लिए वो बहुत जरूरी काम आएंगी। और सिर्फ पत्राचार लिखावट में ही नहीं, अगर आप ईमेल भी करते हैं
जी जी।
तो अपना ईमेल जो है वो सारे आप सिक्योर करके रखें, क्योंकि आज की डेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मेल से कोई भी चीज भेजी गई है उसको कोर्ट की मान्यता है।
जी जी, बिल्कुल।
उसके बाद जिस तरह आप कोई ठंडा पेय लेते हैं और उसके अंदर आपको कोई चीज खराब मिलती है या आप दवाई की बोतल लेते हैं
जी जी,
और उसके अंदर आपको ये दिखता है कि उसकी सील टूटी हुई है या कोई और वजह है, या उसके अंदर कई बार ये होता है कि दवाइयों के अंदर मिठास होती है, तो आप जो दवाई लेके आते हैं वो बेसिकली दवाई आती है एक कवर के अंदर
जी।
तो कवर के अंदर क्या है आपको नहीं पता चलता
जी।
तो ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बल्कि वो सारी चीजें भी अपने पास रखनी आपको बहुत जरूरी है।
जी जी, यानी तो प्रोडक्ट तो रखें ही रखें, लेकिन उसके अलावा बिल्स और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं उस चीज को, जब तक वो एक्सचेंज होकर नहीं है या आपने अपनी तरफ से कुछ खर्च किया है, तो उसके बिल्स भी आपको संभाल के रखने चाहिए।
और सारी कम्युनिकेशन।
जी बिल्कुल, सारे कम्युनिकेशन भी संभाल के रखने हैं। अगर आपने कोई ईमेल भेजा है तो वो भी जरूर रखें अपने पास सेफ। एसएमएस भी मान्य है या नहीं है?
एसएमएस के ऊपर इस समय आर्गुमेंट है, एसएमएस मान्य जरूर है
जी।
लेकिन इसके ऊपर डिफरेंट जजमेंट्स आई हैं, तो मैं एसएमएस को
प्रेफरेंस
नहीं दूंगा।
जी जी, यानी एसएमएस अगर है तो उसको ज्यादा खास तवज्जो नहीं दी जाएगी। उसके अलावा आप कह रहे हैं कि ईमेल के थ्रू जितनी भी आपकी कन्वर्सेशन हुई है या फिर आपने लेटर्स भेजे हैं वो आप जरूर संभाल के रखें।
जी
जी। तो संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, यानी एक ऐसा एक्ट जो एक आम आदमी के लिए बना है, एक आम उपभोक्ता के लिए बना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
थैंक यू दीक्षा।
तो बहुत सारी बातें हमने करी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़ी हुई। फिलहाल दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।